हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा ने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन धरा के पिताजी कुछ भी बताने में असमर्थ थे, क्योंकि एक तो वो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चुके थे और शायद कुछ ऐसा हुआ था जिन्हें जो उन्हें बताने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उनकी जबान उनके साथ ही नहीं दे रही थी। तब तारा परी ने आगे बढ़कर उनके दोनों हाथों को थाम लिया था और सब कुछ समझने की कोशिश करने लगी थी। और जैसे जैसे तारा परी धरा के बारे में जान रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू टप टप निकलने लगे थे। तारा परी रोने लगी थी, क्योंकि धरा के साथ क्या हुआ था उसे सब कुछ नजर आ गया था। फ्लैशबैक हुआ ये था, तारा परी के ठीक करने के दूसरे दिन ही सुधीर मिश्रा, वो एमएलए का बिगड़ा हुआ बेटा जिसने धरा पर एसिड अटैक करवाया था, वो उसके घर आ पहुंचा था। और उसे जैसे ही उसने धरा की शक्ल को देखा था, वो हैरान रह गया था और अपने बंदों को धरा के सामने करने लगा था और बोला था, ऐसा कौन सा तेजाब फेंका था तुमने इस लड़की पर जो इस लड़की की शक्ल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई? हाँ बोलो, जवाब दो। तब उनमें से उसका एक आदमी गिड़गड़ाता हुआ बोला था, नहीं सर, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने जो इसके ऊपर तेजाब फेंका था वो एकदम अच्छी क्वालिटी का था और उससे इसका चेहरा बुरी तरह से झुलस चुका था और ये बहुत ही भयानक दिख रही थी। यहाँ तक कि इसके चेहरे की नसें हड्डियाँ तक नजर आने लगी थीं, क्योंकि उस तेजाब ने उसकी हड्डियाँ तक गला दी थीं। अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। तब सुधीर मिश्रा ने धरा के गाल को छूते हुए कहा था, चाहे कुछ भी कहा हो पर कहीं ना कहीं तुम लोगों से मिस्टेक तो हुई है, वरना ये लड़की ऐसे एक बार फिर हमारे सामने खड़ी नहीं होती। और क्योंकि अब तो ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है, तो इसे मारने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लो। ऐसा कहकर सुधीर मिश्रा ने धरा को अगवा कर लिया था। सुधीर मिश्रा, जो एक बिगड़ा हुआ रईस सादा था, उसकी नज़र वहाँ धरा जी आश्रम में काम किया करती थी, उसकी प्रॉपर्टी पर थी। लेकिन धरा ये नहीं चाहती थी कि वो आश्रम की जमीन उस एमएलए के बेटे के हवाले की जाए, क्योंकि उसे आश्रम की जमीन पर कितने ही गरीब बच्चे रहा करते थे। अगर वो जमीन वो सुधीर मिश्रा ले लेता तो वो सभी के सभी बच्चे बेघर हो सकते थे। धरा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और बहुत ही कम सैलरी में वो उसे आश्रम में काम किया करती थी। और जब उसने सुधीर मिश्रा के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी तो उसने उसके ऊपर तेजाब फेंकवा दिया था, लेकिन तारा परी ने अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा उसे ठीक कर दिया था। लेकिन अब उसकी यही खूबसूरती उसे भारी पड़ चुकी थी। सुधीर मिश्रा ने अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे अगवा कर दिया था और दिन रात उसके साथ उसके जिस्म से खेलने लगा था। धरा को उसने अपने एक प्राइवेट फॉर्म हाउस पर रखा हुआ था और वो जब तक चाहता था उसे मसलते रहता था, लेकिन वो धरा के आत्मविश्वास को तोड़ नहीं पाया था। धरा का एक सिग्नेचर उसे जमीन को हमेशा हमेशा के लिए उसके नाम कर सकता था। वही सिग्नेचर हासिल करने के लिए उसने उसके जिस्म से खेलना शुरू कर दिया था और उसके जिस्म पर दिन रात इतने टॉर्चर करने लगा था जिससे कि वो परेशान होकर खुद ही उसे जमीन पर कागजों पर साइन कर दे। लेकिन धारा टस से मस नहीं हुई थी, उसे अपने जिस्म पर जुल्मो सितम मंजूर थे, लेकिन इस तरह से उन हजारों मासूम बच्चों को घर से बेघर करना उसे मंजूर नहीं था। इसीलिए धारा उस सुधीर मिश्रा की कैद में कितने ही जुल्मो सितम सह रही थी। तारा परी सब कुछ जान चुकी थी और उसका खून खौलने लगा था। उसने सोच लिया था कि वो अब उस सुधीर मिश्रा को नहीं छोड़ेगी और धरा की जान बचाएगी। आखिर धरा ने उसे इंसानों को समझने की शक्ति दी थी। इंसानियत का क्या होता है, धरा के ही नेचर ने उसे बताया था और वो इस तरह से धरा को नहीं छोड़ सकती थी। कुछ सोचकर तारा परी ने धरा के पिताजी से कहा था, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं धरा को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगी। तारा परी की बात सुनकर धरा के पिताजी उसका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो दिए थे और बोले थे, मेरी बेटी जिंदा बच भी जाएगी तो क्या उसकी इज्जत का क्या, उसकी इज्जत तो अब बर्बाद हो चुकी है। धरा के पिताजी की बात सुनकर तारा परी बोली थी, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, क्या कोई इज्जत किसी की आपकी बेटी की तो इसमें कोई गलती नहीं है ना, जो भी गलती है वो सुधीर मिश्रा की है। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर आप भी धरा का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? पूरी दुनिया में आपके अलावा उसका कोई नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब वो 8 साल की थी तब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और अपने ही उसे माँ और बाबा दोनों का प्यार दिया था और अपने ही तो उसे सब हिम्मत से लड़ना सिखाया था। तो अब आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तारा की बातें सुनकर धारा के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए थे और उसकी ओर हैरानी से देखने लगे थे और बोले थे, बेटी तुम हो कौन और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? आखिर तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो? तब तारा ने धारा के पिताजी से कहा था, मैं कौन हूँ अंकल? कौन नहीं, आपको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें आपसे ये वादा ज़रूर करती हूँ कि मैं उस सुधीर मिश्रा को उसके किए की सज़ा ज़रूर दूंगी और धारा को सकुशल आपके पास लेकर आऊँगी। तारा की बातें सुनकर धारा के पिताजी के अंदर भी एक हिम्मत ने जन्म ले लिया था और वो उसके सर पर हाथ फेरने लगे थी। तारा परी जल्दी ही वहाँ से निकल गई थी और उसने सोच लिया था कि उसे अब क्या करना है। तारा परी ने जल्दी ही अपनी शक्तियों के द्वारा ये पता लगा लिया था कि उसे सुधीर मिश्रा ने धारा को कहाँ रखा हुआ था। तारा परी ने समय देखा था, अभी उसके पास केवल 2 ही घंटे बाकी थे क्योंकि 2 घंटे के बाद ऑफिस से अमन सीधा घर ही पहुंचने वाला था और तारा परी को अमन के पहुंचने से पहले पहले घर पहुंचना था। अगर वो उससे पहले वहां नहीं पहुंची तो पक्का अमन उसे कितने ही सवाल जवाब करने वाला था और उसे समझ में नहीं आता कि वो अमन को क्या जवाब देगी। सुधीर मिश्रा ने धरा को शहर के बाहर एक गेस्ट हाउस में रखा हुआ था। तारा परी जल्दी ही अपनी आत्मशक्ति के द्वारा वहां पहुंच चुकी थी और अदृश्य होकर उसे बंगले के अंदर चली गई थी और जल्दी ही उसने वहां एक एक करके एक एक कमरे को देखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे धारा का नामो निशान भी कहीं नहीं मिला था। तारा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपनी आत्मशक्ति के द्वारा पता लगाया था कि धारा यहीं पर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी आत्मशक्ति उसे गलत बताएगी? धारा वहां कहीं से कहीं तक नहीं थे। तारा परी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो धारा को कहां पर ढूंढे, लेकिन और इससे पहले कि वो वहां से बाहर निकलते तभी उसे वो MLA का बेटा सुधीर मिश्रा आता हुआ दिखाई दिया था। उसने केवल एक पैंट पहन रखी थी, ऊपर से वो एकदम शर्टलेस था और बड़े उसके हाथ में एक दारू की बॉटल थी और वो बड़े ही स्टाइल से टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ एक कमरे की ओर जा रहा था। तारा परी समझ चुकी थी कि जरूर ये धारा के पास ही जा रहा होगा क्योंकि तारा परी ने वहां का एक एक कमरा खंगाल मारा था, लेकिन उसे धारा नहीं मिली थी। तो तारा परी ने सोचा, क्यों ना इसका पीछा किया जाए कि ये कहाँ जाता है। तारा परी उसके सुधीर मिश्रा के पीछे पीछे उस कमरे में चली गई थी जिसमें वो पहले ही चेक कर चुकी थी, लेकिन वहां धारा नहीं थी। और जैसे ही सुधीर मिश्रा उस कमरे में गया, वो आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर बुरी तरह से हंसने लगा था। तारा परी उसको ही देख रही थी क्योंकि तारा परी अदृश्य थी तो वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर हंसने के बाद सुधीर मिश्रा ने उसे आईने को धक्का देना शुरू कर दिया था और जैसे ही सुधीर मिश्रा ने थोड़ा जोर लगाकर उसे आईने को पीछे की ओर खिसकाया, वो एकदम से एक दरवाजे में बदल गया और एक और ही अलग दरवाजा खुल गया था। सुधीर मिश्रा ने धारा को एक चोर वाले कमरे में रखा था ताकि अगर धारा के पिताजी पुलिस को लेकर वहां छापेमारी के लिए जाएं तो भी उन्हें वहां पर कोई ना मिल पाए। तारा परी समझ चुकी थी कि जरूर धारा इसी आईने के पीछे वाले कमरे में होगी। वो भी उसके पीछे पीछे उसे आईने वाले कमरे में चली गई थी और जैसे ही उसने जाकर देखा तो उसके होश पूरी तरह से उड़ गए थे। एक उसे कमरे के अंदर एक बेड पड़ा हुआ था और उसे पर धारा को लिटाया गया था। उसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, केवल उसे एक चादर से ढका हुआ था और उसके दोनों हाथों को बंद रखा था। तारा परी ने जैसे ही ये देखा, गुस्से के मारे उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख हो गई थीं और उसका दिल चाह रहा था कि वो सुधीर मिश्रा की इस वक्त जान ले ले। जैसे ही वो सुधीर मिश्रा वहां गया, उसने धारा के जिस्म से वो चादर हटाने शुरू कर दी थी और उसे देखकर बुरी तरह से हंसने लगा था और बोला था, क्या बात है, हर रोज तेरे इस खूबसूरत जिस्म को लूटता हूँ, इसका एक एक हिस्से को चूमता हूँ, लेकिन फिर भी तेरी ये खूबसूरती कम होने का नाम ही नहीं लेती। दिन पर दिन तेरी खूबसूरती बढ़ती जाती है। मेरी इस कैद में तुझे पूरे 6 महीने होने वाले हैं, और इन 6 महीना में आज तक भी तेरे इस जिस्म से मेरा मन ही नहीं भर रहा है। आखिर ऐसा क्या है तुझमें? ऐसा कहकर वो एक बार फिर धारा के जिस्म पर टूटने था, लेकिन तारापारी ने अपनी जादुई शक्ति से उसे धारा को छूने भी नहीं दिया था और उसे दूर फेंक दिया था।